क्या हुआ? वह दखला माहु सिजन फतयान, और दाखिल हो गए उनके साथ जेल में दो जवान। फतुन से फतयान ड्यूल यानी तस्निया का सीगे। अब जेल में आपको होता है हर तरह के कैदी होते हैं, इनके साथ वहां दो जवान भी आ गए। काला अहदुहुमा, उन दोनों में से एक ने कहा, इन्नी अरानी आसिर खमरा, मैंने खुद को देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। ख्वाब देखा एक शख्स ने, दोनों में से एक ने, कि मैंने खुद को देखा है कि मैं शराब जो है वो निचोड़ रहा हूँ, मुराद ये कि बना रहा हूँ, उसको कशीद कर रहा हूँ। वकाल अलाखरु, और दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी अहमिलु फौक रासी खुबजा, मैं खुद को देखता हूँ कि मैंने उठाई हैं अपने सर पर रोटियाँ। ताकुलु तैरु मिन्हु, जिसको परिंदे खा रहे हैं, उन रोटियों में से कुछ को परिंदे खा रहे हैं। हमको खबर दे दो इसकी ताबीर की, यानी इन ख्वाबों की ताबीर बता दो। क्यों? इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको मोहसिन देखते हैं। आइए जरा इधर बात करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में कोई कहानी नहीं सुनाई उनको, अपने साथ जो होने वाले जुल्म और सितम थे उनकी कोई खबर नहीं बताई, पीछे से अपने खानदान का कोई बड़ा प्यारा तारुफ नहीं कराया कि इन्नी करीम करीम इब्नु करीम इब्नु करीम इब्नु, कुछ नहीं, खामोश थे। लेकिन जेल में आने के बावजूद जो उनको लकब मिल रहा है वो क्या है? इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। ये है असल बात, ये है वो पहला सबक जो बच्चियों को पढ़ा के भेजें अगर आप उनको ससुराल भेज रहे हैं, और ये है वो पहला सबक आप हर उस बंदे को पढ़ाइए जिसको आप दुनिया में कामयाब करना चाहते हैं। आप यहां से अब आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार, एक दाइये दीन का, एक प्रीचर, स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, इस्लाम फैलाने वाले का देखेंगे कि यूसुफ कौन थे? मुसलमान। मुल्क कौन सा था? नॉन मुस्लिम। आप मिसाल के लिए ले लीजिए, जैसे आज के दौर में यूसुफ मुसलमान है, लंदन जो कि क्रिश्चियन मुल्क है उसकी किसी जेल में गए हैं, वहां जो लोग ज्यादा लोग होंगे वो कौन होंगे? क्रिश्चियंस ही होंगे ना। नॉर्वे में होंगे तो एथियस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मुल्क की जेल में पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द सारे नॉन मुस्लिम है, हम होते तो क्या कहते? ये हमसे हसद करते हैं, ये हमें टेररिस्ट कहते हैं, ये हम मुसलमानों को फनेटिक कहते हैं, और ये हम पे बहुत इल्जाम लगाते हैं। आज हम यही शोशा करते हैं ना कि जी हम मुसलमानों को लोग बड़ा बुरा कहते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन? इसलिए कि यूसुफ ने जेल में भी अपने किरदार से दिखाया कि मैं लेने वाला नहीं हूं, देने वाला हूं। मुहसिन कहते ही उसको है जो हक से ज्यादा दे। और मोहसिन बना दीजिए आप अपने आप को, अपनी बेटी को मोहसिना बना के भेजिए, बुरे से बुरे माहौल से भी इज्जत लेके आएगी। और अगर आप उसको शादी के गानों और टप्पों में एक जालिम सास और दो होनहार नंदों का तसव्वुर दे के भेजेंगे और साथ ही कह देंगे दबना ना, और तू कोई छोटे बाप की बेटी नहीं है और तेरी ये मेरी ये, तो चौथे दसवें दिन के बाद ही अगर बातें बिगड़ गई तो माइंड भी ना करें। सबसे पहले एक सच्चे दाइये दीन को, जिसको दीन का काम करना है, हम सबको करना है कि नहीं करना? कुंतुम खैर उम्मत इन उखरिजत लिन्नास, लोगो तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। दो दफा सूरत आले इमरान में अल्लाह ताला फरमा देते हैं कि लोगो तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए भेजे गए हो। वल तकुम मिनकुम उम्मतन उम्मत यदून इलल खैरी व यामुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर। दूसरे पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला ने हमें कह दिया, वजल ना कुम उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदा अलन नास, हम में से हर एक मुसलमान बच्चा बच्चा पैदाइशी दाइये दीन है। पहले नबूवत का ताज एक नबी के बाद दूसरे नबी के सर पे होता था, एक नबी दुनिया से जाते थे तो दूसरे लोग आ जाते थे पैगाम देने। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी, आपके बाद अब आने वाली नस्लों को पैगाम कौन देगा? जैसे आज हम बात करें कि लोगों को कौन दीन सिखाएगा, क्योंकि नबी तो चले गए। तो आपने फरमाया कि तुम मेरी उम्मत अब वो मनसब अख्तियार करेगी जो नबूवत का था, यानी अब नबूवत तो खत्म हो गई है लेकिन कारे नबूवत बाकी है। आज हमारे घरों में, हॉस्पिटल्स में, किसी मुसलमान माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होता है वो पैदाइशी एक जिम्मेदारी लेके आता है, और वो क्या है कि कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून का पैगाम दो। हमें अल्लाह ने एक नेमत दी, हाथों में बगैर मारे खाए, बगैर कूड़े खाए, बगैर कांटों पे लटाए, पत्थरों पे चलाए, इस्लाम मिल गया। हम में से किसी ने चोट खाई इस्लाम के लिए? नहीं खाई, इसलिए हमें कदर ही नहीं। हम में से बहुत सारों ने तो ये पैगाम ही नहीं अपने बच्चों को दिया, क्योंकि हमें खुद नहीं आज तक पता। 25 से 30 साल तो कम अज कम उम्र होगी ना अक्सरियत की, हमें आज तक ये भी नहीं पता कि बीइंग अ मुस्लिम व्हाट इज आवर ड्यूटी। मेरा क्या फर्ज है? किसी को राह चलते पूछे, 10 10 लोग चूज कर लें, 10 यंग्स लड़कों को पूछ लें, लड़कियों को, 10 बुजुर्गों को कि बेटा तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर बच्चे को पूछेंगे वो कहेगा स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पर यंग लड़के से पूछेंगे तो हो सकता है वो कह दे कि अपना कैरियर बनाना, औरत से पूछेंगे वो कहेगी घर से जाना, बच्चे, यही पूछते हैं ना। और अगर उनको हल्का सा शक भी पड़ गया ना कि आप किसी रिलीजियस पर्पस की बात कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए जो आपको जवाब मिलेगा ना वो क्या होगा, जी नमाजें पढ़ना, वो जी रमजान के रोजे रखना, जो हज करना। हम इसे बहुत थोड़े लोग ये जानते हैं कि ये नमाज, रोजा, हज, जकात ये मकसद नहीं है, ये प्रेपरेशन है, ये टूल्स हैं, ये ट्रेनिंग है। दिन में 5 बार अल्लाह ताला हमें नमाज के लिए खड़ा करके अपने रास्ते में खड़ा होना सिखाता है। कूमु लिल्लाहि कानितीन, जिंदगी में 1 बार हज करवा के हमें यूनिटी सिखाता है कि देखो रंग रंग की दुनिया है, तुम खुद को ना खुद समझो बड़े हो, दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं। ज़कात देकर अल्लाह ताला शेयरिंग सिखाता है, एक लेक्चर है पूरा जिसमें इन 5 रिचुअल्स की रियलिटी बताई गई है। हम तो हाल हमारा ये है कि बचपन से नमाजें पढ़ते आ रहे हैं, हमें आज तक ये नहीं पता कि नमाज पढ़नी क्यों है। वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो जब आप लोगों से पूछेंगे ना, तो बहुत भी कहेंगे ना, तो वो दीन के किसी रिचुअल की बात कर देंगे। लेकिन आज आप सब अपने दिल की तख्तियों पर ये लिख के जाएं, हो सकता है आपके लिए ये मौजू बिल्कुल अनरेलीवेंट हो, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं, आप तो एक बहुत प्यारी लव स्टोरी सुन रहे थे और इसमें से बहुत खूबसूरत मैसेज ले रहे थे। लेकिन अगर ये जुमला मैं नहीं बोलूंगी तो यकीन कीजिए कि मैंने हक अदा नहीं किया। और वो क्या है कि हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, हर बच्चे की पैदाइश का मकसद क्या है कि कुम फअंजिर, खड़े हो जाओ और डराओ। माएं अपने बच्चों को गोद में लेती थी, जब दूध पिलाती थी तो उनको मुजाहिदों के किस्से क्यों सुनाती थी, क्यों कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के पुरानी माएं दूध पिलाती थी। आज भी आपकी नानियों दादियों में कई ऐसी औरतें होंगी जो ये दावा करती हैं कि मैंने इस बच्चे को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया। पैदाइशी तौर पे माएं कहती थी, वो उम्मे अमारा को याद कर लीजिए, वो कितनी माएं थी कहती थी कि बेटा तू दीन का सिपाही है, मैं तुझे इसलिए पैदा कर रही हूं कि तूने दीन का काम करना है। अच्छा, लफ्ज सिपाही आता है ना, तुम्हारे जहन में तलवार आ जाती है, और लफ्ज जिहाद आता है तो मैदाने जंग आता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, याद कीजिएगा, तलवार की जरूरत नहीं पड़ती उन कौमों में जहां कलम उठा लिए जाते हैं, और मैदाने जंग में जाके काफिरों को मारने की कतई जरूरत नहीं है अगर आप तबलीग के जरिए उनको खूबसूरत दीन सिखा लें। आज पूरी दुनिया पे आग लगी हुई क्यों दिखती है, सोचिए जरा। हम कहते हैं कि उधर मुसलमान मारे जा रहे हैं, उधर मारे जा रहे हैं, उधर कहीं चेचनिया में, कहीं बॉस्निया में, कहीं इधर, आपको पता है इसकी वजह क्या है? ये रिएक्शन है। उन काफिरों और नॉन मुस्लिम्स को पता है कि इन मुसलमानों के पास हमारी एक चीज थी, और वो क्या है? इस्लाम। अल्लाह ने ये इंसानियत का मैसेज दिया, या युहन्ना सोबुदु रब्बकुम, इंसानियत को पैगाम है, उठो अल्लाह की इबादत करो। हमने तबलीग ना की, हमने अपना दीन ना सिखाया, लोगों ने उसके नतीजे में हमें मार दिया। ऐसे होता है ना घर में, बच्चों में भी, एक बच्चा दूसरे भाई की चीज लेके भागता है ना, तो भाई फिर उसको मारता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरी चीज उठा के ले आया। आज इस्लाम की नेमत हमने दूसरों से छुपाई, उन्होंने हमारे हाल पे क्या हाल किया, इसको हम देखते हैं। हम मुसलमान जो अपने मुसलमान मुल्कों में तो बहुत प्रोटेक्टेड है ना, कब आखिरी दफा दीन की बात की? यहां मैं आपको थोड़ी सी पहले तमहीद बांध देती हूं कि मैंने एक दर्स में भी ये बात पूछी थी कि ये बताइए कि आज सुबह से आपने दीन के लिए क्या किया। एक दर्स में था, आप सबसे भी ये सवाल मेरा हो सकता है अगर आप मेरे साथ मेंटली तौर पे चले। तो मैंने सिस्टर से पूछा एक दर्स में कि ये बताइए कि आपने आज सुबह से इस्लाम के लिए क्या किया। तो बहुत उन्होंने अच्छी अच्छी बातें माशाल्लाह बताई, क्योंकि हमारे रिचुअल्स तो हैं ही हैं। एक कहने लगी कि जी सुबह उठी, तहज्जुद पढ़ी, फिर नमाज का तज़किरा किया, फिर दुआओं की बात की, जिक्र अज़कार की, कुछ ने चाश की बात, यानी जो हम लोग सब करते हैं रिचुअल, उसी की बात की उन्होंने। फिर मैंने उनकी बात सुनकर उन्हें कहा कि देखिए एक बात तो बताइए, ये सब तो आपने अपने लिए किया, ये तो आपका फ़र्ज़ है, ये इस्लाम के लिए तो नहीं किया। अब उनको ज़रा समझ आई कि ये कुछ और पूछ रही हैं। मैंने कहा देखें, हम जितना भी दीन का कोई इबादत करते हैं तो इंशाल्लाह उसके बदले में हमें जन्नत मिलेगी। तो मैंने कहा आपने इस्लाम के लिए क्या किया, कहने की वो क्या होता है भाई, इस्लाम के लिए कुछ करना वो क्या होता है। इधर मैंने कहा कि वो ये होता है कि आपकी किसी कोशिश से इस्लाम को फायदा हो या लोगों तक इस्लाम पहुंचे। तो फिर सब खामोश थे। बात वाज़े, या तो हमारी वजह से इस्लाम को इज्जत मिले, और दूसरी बात है कि इंसानियत जो हिदायत से तरसी हुई है, हमारी किसी कोशिश से उस तक इस्लाम पहुंचे, उस पर सब खामोश थे। तो हम पाकिस्तान में रहने वाले और माशाल्लाह सऊदी अरब में रहने वाले लोग तो इबादात में ही बहुत पक्के हो जाएं, तो यही बड़ा जिहाद है। और हकीकत है कि जब मुसलमान जो हैं वो अपने दीन पे अमल करते हैं तो उससे भी इस्लाम को बहुत मजबूती मिलती है। लेकिन आइए ज़रा देखिए कि वेस्ट में इस वक्त इस्लाम को स्प्रेड करने की क्या कोशिश है। टॉपिक ही क्या है कि लंदन दावा। वेस्ट में जो इस्लाम का काम हो रहा है ना, मैं अपने पूरे शऊर और बग़ैर किसी तासुब के, क्योंकि मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, एक मुसलमान मुल्क का शहरी होने पे मुझे बहुत फ़ख्र है। ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ से आई हूँ तो मैं आपको उनकी बातें करके खुश कर रही हूँ। लेकिन जो शऊर अब वेस्ट के मुसलमानों में आ रहा है ना, हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ जो वहाँ दीन के साथ जुड़ गए हैं, फिर उनको नहीं इस बात की परवाह कि कौन क्या कहता है। वला तखाफू नलौम अतलाइम, वो किसी की मलामत से नहीं डरते। रोड्स के ऊपर दावा कैसे हो रही है ये मंजर देखिएगा। ये लंदन की एक रोड है और हमारा यूथ जो है वहां सड़क के किनारे जमात से नमाज पढ़ रहा है। और अगर आप पीछे दीवारों को देखिए, कौन लोग हैं इधर फिरने वाले? नॉन मुस्लिम है। इनको शर्म नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे? आज जरा आप शाम को अपने बेटे से पूछिएगा, बेटा कितनी नमाजें पढ़ी हैं सुबह से? तो कहेगा, अम्मी मैं तो वहां था, मैं वहां था, मैं रात को पढ़ूंगा। भाई क्या हो गया, वहां पढ़ लेते? लो मैं वहां पढ़ता। दफ्तरों में हमें पढ़ने पे शर्म आती है, बैंकों में खड़े हैं तो वहां शर्म आती है, रोड्स के किनारों पे खड़े हुए शर्म आती है। इनको नहीं आ रही क्योंकि वी आर प्राउड टू बी ए मुस्लिम। हम ऐसे मुसलमान बनना चाहते हैं जिनको अपने इस्लाम पर फख्र हो। खुलेआम रोड है, चारों तरफ ये गोरे खड़े हैं, ये सब लोग इनको देख रहे हैं। मुझे इस मंजर को देख के एक सीरत का वाकया याद आ गया कि एक जंग थी तो सहाबा इकराम वापस आ रहे थे जंग से। इतने में नमाज का वक्त हो गया, अमीरे लश्कर ने कहा कि पड़ाव डालो, यानी हम यहाँ स्टॉप ओवर लेंगे। कहा वजू करो, नमाज पढ़ेंगे। इमाम की इमामत में जब सब ने नमाज पढ़ी तो गांव के लोग इधर उधर के बद्दू जो थे वो खड़े होके देखने लग गए, ये क्या हो रहा है? एक बंदा जो काम कर रहा है सारे वही कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, दिल पे रोब भी आ गया कि इतना डिसिप्लिन रिलीजन है। सलाम फेरी, लोग करीब जमा हुए, कहा ये तुम लोग क्या कर रहे थे? बस पैगाम दिया थोड़ा बहुत, और कहा अच्छा इतना प्यारा दीन है कि एक बंदे की लीडरशिप में पूरे का पूरा गांव मुसलमान हो गया। वल्लाही कि इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, आज अगर हम मुसलमान मुहसिन बन जाए, कान्ना का तराहू तकवा का वो दर्जा हो कि अल्लाह हमें हर जगह दिखे, हम किसी मस्जिद में खड़े हैं कि नहीं खड़े, नमाज का वक्त आ गया हमें नमाज पढ़नी है, तो फिर देखिए कि लोग हमें राह चलता देख कर मुसलमान होंगे। और ये सब जान के भी वो करते हैं बाज़ औक़ात कि मस्जिद नहीं भी होती और दूसरों को दिखाने के लिए कि हमें शर्म नहीं आती। ये देखिए कितनी बिजी रोड है ये लंदन की, और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत एक स्लाइड इन्होंने तैयार की हुई कि देर आर सम क्वेश्चंस इन द ग्रेव दैट गूगल कैंट आंसर। मेरी बात को यंगस्टर तो समझ ही गए होंगे। आज हर मर्ज की दुआ जो है ना हमारे लिए वो गूगल है, यकीन कीजिए। मैंने अगर इधर आने के लिए एड्रेस देना होता तो शायद मैं आपका नाम लिख के एड्रेस डालती तो गूगल आपके घर का एड्रेस दे देता, लेकिन कब्र के तीन सवाल है उसका गूगल जवाब नहीं देगी। फिर सर आप ये देखिए कि ये टेबल लग रहा है, ये दावा टेबल सेट कर रहे हैं दो ब्रदर्स, और इसके बाद अब यहाँ ये कुरान पाक रख के लोगों को राह चलते हुए देंगे कि आओ देखो हमारी ये किताब कितनी खूबसूरत है। ये देखिए अब ये बूथ लगा हुआ है और ये सिस्टर कोई है, ये इनको उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम में थोड़ी सी बात करके फिर लोगों को ये देना पड़ता है। कुरान पाक रखे हुए हैं और ये थोड़ी सी बातचीत करके और लोग इंटरेस्ट लेते हैं। हमने कब आखिरी दफा लोगों को कुरान बांटे? हम तो बांट के बड़े खुश हो जाते हैं, खुद चाहे पढ़े ना पढ़े। याद रखिए ये तड़प लगानी पड़ेगी। अब इस शख्स ने कुरान लिया, इसे ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम ब्रदर है, ये कुरान पाक इसको दे रहे हैं। और हजारों मुसलमान सिर्फ इसलिए हो रहे हैं लोग कि इतना कुरान जो बटता है फिर वो मिलता है उनको। खास तौर से 9/11 के बाद इतना कुरान वहां बटा है कि हमारे एक बहुत अच्छे साथी, उनका बिजनेस है किताबों का, तो उन्होंने बताया कि बाकी मुसलमानों के कारोबार शायद ठप हो गए हैं उसके बाद। ऐसे ही सोच, एक परसेप्शन है, लेकिन हमारा किताबों का रिकॉर्ड बिजनेस हुआ उस साल जिस साल 9/11 हुआ। इतने कुरान बिके हैं, लोग कहते हैं लो देखें ये कौन सा दीन है। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये बहरहाल देख लीजिए कि हम लोग इस चीज में नहीं सोचते और राह चलते हैं, हमें इतना दिल में तड़प आती है। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कभी भी गुजरूं कि शायद इस शख्स की, जो ये लड़की या औरत गुजर रही, इसकी हिदायत मेरे हाथ में, मेरे जरिए से अल्लाह ने रखी थी और मैं घूंगी बैठ के इससे बात ना करूं और ये महरूम रह जाए। कल कब्र में कितने लोगों के बारे में हमसे जवाबदेही होगी। ये देखिए अब ये बच्चों के साथ आदमी जा रहा है और उसको ये कुरान दिखा के तबलीग दे रहे हैं उसको कि तुम ये ले जाओ, कोई एक तो पढ़ेगा। और मैं आपको इस पर एक छोटी सी एक्टिविटी दे देती हूँ, अगर हुआ तो वो बुक ले आएंगे कि हम मुसलमान कैसे हुए, ऐसी बुक्स पढ़ा करें, न्यू मुस्लिम्स की बुक्स पढ़ें कन्वर्ट होने की, उससे ईमान बहुत मिलता है। और अक्सर की यही रीजन्स होती हैं। एक वाक्य याद आ गया वो सुना देती हूँ फिर आगे चलते हैं। اب یہ خوش کتنی ہے عورت، ایک عورت کی بلکہ بات یاد ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئی تو کہتی تھی کہ میرے دل میں اتنی خوشی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہر کی سب سے اونچی عمارت پہ جاؤں اور اونچی اونچی لوگوں کو بتاؤں کہ لوگوں میں نے ایک بہت بڑی دولت پا لی ہے. اسی طرح ایک عورت تھی، شاید نیو یارک کی بات ہے، تو کسی مسلم نیبر میں رہتی تھی، 20 سے 25 سال تک وہ اس کے نیبر میں تھی. روز صبح اٹھتے ہوئے جانا، ہائے بائے ہیلو کرنا اور چلے جانا. کچھ عرصے تک وہ بوڑھی عورت نہیں ملی، نظر نہیں آئی. اس کو لگا کہ پتہ نہیں کدھر ہے. خیر کچھ عرصے کے بعد اس بردر کو وہ عورت پھر دکھ گئی. اس نے اس کا پوچھا، ہائے ہیلو تم کہاں تھی؟ تو اس عورت نے کہا، آئی ہیٹ یو، مجھے تم سے نفرت ہے. اب یہ پریشان ہو گیا، ابھی تمہیں نفرت کیا؟ کہنے لگی، ہوا کیا؟ کہنے لگی کہ میں پچھلے 20-25 سال سے تمہارے آمنے سامنے رہتی ہوں، تم نے آج تک مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی اور مجھے ان دنوں میں کسی ذریعے سے اسلام کی بات ملی، قرآن ملا، میں نے اب پڑھا، نو آئی ایم مسلم اینڈ آئی ہیٹ یو، تم جیسے مسلمان سے میں نفرت کرتی ہوں کہ جس نے اتنا پیارا دین مجھ سے چھپایا ہوا تھا. اسی طرح ایک عورت کی کہانی پڑھی کہ کرسچن تھی، پھر بیمار ہو گئی. اس بیماری میں اللہ نے اس کو صحت دی اور اس صحت کے بعد اس کو کسی جگہ سے قرآن مجید کا کوئی نسخہ ملا، کسی نے اس کو موٹیویٹ کیا، پڑھا، سیکھی، مسلمان ہو گئی. پھر کچھ عرصہ زندہ رہی، پھر دوبارہ بیمار ہوئی. تو جب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھی نا، اس دن اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں اپنی پچھلی بیماری میں مر جاتی تو مسلمانوں میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا تھا، کیونکہ تم نے مجھے اتنا پیارا دین نہیں دیا. تو یہ تو دل کے اندر اتنا درد ہے. شاید میری آواز میں آپ کو بڑی تلخی لگی ہوگی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آج ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا پہننا اوڑھنا جیولرز اور یہ سب کچھ، کہاں ہمیں یہ دکھتے ہیں؟ یہ گورے چہرے کہ میں کبھی دیکھوں نا تو میں کہتی ہوں اللہ یہ آگ میں جائے گا، رونا آ جاتا ہے. اور جو دکھ معصوم بچوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، کبھی آپ ٹرینوں میں آتے جاتے دیکھیں روڈ پہ، میں کہتی ہوں اللہ اس بچے کا کیا نصیب ہے، اس کو کیسی ماں ملی ہے، اس کا لاڈ اس کو کیا بنائے گا، اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے. شاید جب بزرگ 100 سال کے قریب کے ہوں گے، اب یہ قرآن اور خوشی، اللہ اگر ان کو دین دے دیتا ہے. جی یہ ہو گیا، پیٹرک ایمبیرسڈ اسلام ایٹ دی ایج آف 86، 86 سال کی عمر میں اس بندے کو اسلام ملا، کسی کی کوشش سے ملا نا، اور اس کی خوشی دیکھے. تو تڑپ پیدا کیجیے. آپ کے گھروں میں ماسیاں، ملازم، کوئی کرسچین ہے، کرسچنز کو چھوڑ دیں، اللہ کے بندے ہم تو صرف اپنے مسلم نوکروں کی کلمہ ہی سن لیں نا، ان کی نماز سن لیں تو ہمیں ہو سکتا ہے اس دن بھوکی نہ لگے. اتنا دکھ ہوگا کہ یہ جو سارا دن ہماری خدمت کرتے ہیں ان کو تو طہارت کا بھی نہیں طریقہ پتا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے محسن بن کے دکھایا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام کیا. تو پہلے محسن بنی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں دین کا کام کرنا چاہتی ہیں نا، پہلے محسنہ بنیں. آپ اپنے سسرال کو دین کی دعوت دینا چاہتی ہیں، محسنہ بنیں. دیکھیے خدمت جیتتی ہے. جو چیز جتنی کسی کی دل میں اتر جائے گی نا، اس کی جگہ بن گئی، پھر سونا بھی آپ کا، چاندی بھی آپ کی. شروع کا 1 سال شوہر کی مان لیں، ساری زندگی وہ آپ کی مانے گا. شروع کے چند مہینے ساس کو عزت دے دیں، ساری زندگی وہ آپ کی عزت کرے گی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم دین بھی سکھانا چاہتے ہیں خاندانوں کو دین، لیکن ہم محسن نہیں بننا چاہتے. ہم کہتے ہیں دین جائے کہ کتابیں لے کے جاؤں گی، ان کے گھر کھول کے بیٹھ جاؤں گی، آؤ بیٹھو پڑھیں. کوئی نہیں پڑھے گا اسے. پہلے آپ اپنے کردار سے، لوگ کہیں کہ ان کو ہو کیا گیا، یہ آج سے سال 2 سال پہلے تو کوئی اور ہی شخصیت تھی، کیپتے تھی، چتانے تھے، اب یہ بہت ہی کول ہو گئے. یہ تو وہی اسلام ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہے. کردار جیتا ہے. ایسی شخصیت ہم سب بنائیں دین پہ آنے کے بعد کہ لوگ ہم پہ انگلی نہ اٹھا سکیں. اور یقین کیجئے کہ دین کی طرف آنے کے بعد ہم اپنے نہیں رہتے، پھر ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کوئی بول لوگوں کو اگر دین سے روک لے کہ ہاں جی دیکھا ہے قرآن پڑھ کے ایسے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے کہ ہماری وجہ سے اسلام پہ نام آئے. اب یہاں تھوڑی سی باتیں مزید ہیں جو آیتوں کے ساتھ کھلیں گی، کہ ایک مشرک ماحول میں قید خانے میں لوگ یوسف کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کر لیجئے جو ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں. تو خالد یاسین کا نام اگر آپ میں سے کوئی انگلش اسپیچز سنتا ہے تو شاید نیا نہیں ہوگا، کنورٹ ہیں یہ خود، آسٹریلیا سے تھے، آج کل امریکہ میں ہیں، ساری زندگی دین کی تبلیغ ہے. اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ ایک ایک جگہ ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ہمارے پاس ان کی بہت ڈی وی ڈیز بھی تھیں، آپ گوگل پہ جا کے خالد یاسین ڈالیں تو آپ کو ملے گا. ان کے سارے ٹاپک ہی اسلام کے ہیں، کیونکہ جو خود چوٹ کھا کے آیا ہوتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک پاور پوائنٹ بہت مجھے خوبصورت لگا تھا کہ کیا کیا جائے، کس طرح ہم دوسروں کو دین دیں. تو اس کا دیکھیے پہلا مرحلہ ہی کیا ہے کہ پہلے خود کو علم ہونا چاہیے. ہمیں علم نہیں ہے نا، اس لیے آگ ہی نہیں لگی ہوئی، تڑپ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمیں خود پتہ ہو کہ اسلامک میتھڈالوجی کیا ہے، اسلام کا منہج کیا ہے. پھر اور کل تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، कितना अच्छा लगता है हमें वो बंदा जिसके बारे में हमें पता चले कि कहीं लोग हमें बुरा कह रहे थे और वो खड़ा हो गया और उसने कहा नहीं नहीं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, डिफेंड करे कोई। आज दुनिया में सब लोग इस्लाम को बुरा कह रहे हैं ना, तो आप सोचिए अल्लाह को वो लोग कैसे प्यारे लगते होंगे कि जो अल्लाह सुबहाना तआला के दीन को अच्छा कहते हैं। और मैं आखिर में एक ही बात कहती हूँ कि जब तक दीन को हम अपना दूध पीता बच्चा नहीं समझेंगे ना, तब तक हम सीरियस नहीं होंगे। हमें पता ही नहीं आज हमारे दिल में इस्लाम की कोई तड़प नहीं है। हम बहुत रोते हैं जब हमारी कोई ज़ाती मुश्किल आती है, लेकिन हम नहीं रोते जब दीन पे और इस्लाम पे कोई बात आती है। सैलाब आ जाए तो हम रो लेते हैं, जलजला आ जाए तो रो लेते हैं, भूखों को देख के हमारे दिल में आग लगती है, इस्लाम की भूख वालों को देख के कोई तड़प नहीं आती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इसको हकीकत में अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह लेकर आएँ कि हमें इस चीज़ का शऊर पैदा हो जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने से कोई बात नहीं छेड़ी हुई थी, नोट कीजिएगा, हर वक्त की तबलीग भी फ़ायदा नहीं देती। लोगों पर ये ठप्पा जब लग जाता है ना कि इनके पास जब बैठो एक ही बात है, ये अम्मी तो उठते बैठते एक ही बात कहेंगी, तो फिर समझ लीजिए कि वो अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर लेगा, कान भी बंद करेगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस शख्स को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी है, और आप देखिए इसे एक बड़ी प्यारी बात पता चलती है कि इंसान जेल में भी डाल दिया जाए उसके अंदर जो खूबी होती है ना वो खुल के रहती है। इसलिए आप सोचते ना कि मैं तो बड़ी अच्छी हूँ लेकिन मेरी ससुराल में इज्जत नहीं क्योंकि फुला मेरी लेग पुलिंग करता है, मेरी नन मेरे खिलाफ बातें करती है, वो मेरे मियाँ के खिलाफ कर देंगी। कितने माशरती मसले हैं आज हमारी सोसाइटी में, कोई अपने मियाँ को सास के पास बैठा देख लें तो वहम आने लग जाते हैं, आप पता नहीं मेरी सास मेरे मियाँ को बहका देंगी। जरा मियाँ घर आके गुस्सा करें तो दिल में औरतें सोचती हैं लगता है आज अम्मा से मिल के आए हैं। यकीन कीजिए अगर आप मुहसिन हैं, अगर आप अपने शौहर से सिंसियर हैं, सारी दुनिया मिलके आप आपके खिलाफ शौहर को नहीं कर सकती। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब लगा कि इनको मेरी ज़रूरत है, आप भी अपने बच्चों को उस वक्त दीन की बात बताएं जब आपको लगे कि उनको आपकी ज़रूरत है, फिर वो सुनेंगे ना, वरना हर वक्त नहीं सुनेंगे। तब यूसुफ की बड़ी प्यारी शर्त है, आयत नंबर 37 को देखते हैं, قال لا ياتيكما طعام ترزقانه, कहने लगे नहीं आएगा तुम्हारे पास वो खाना जो तुम खिलाए जाते हो, मुराद यह है कि जब तुम्हारे पास खाना आएगा, الا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما, कहने लगे जब तुम्हारे पास खाना आएगा ना तो मैं उस वक्त तुम्हें तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। मतलब यह कि अभी नहीं बता रहा, थोड़ा सा डिले करवाया। आपको पता है कि जेलों में भी और महज़ब कौमों में खाने पीने के टाइम होते हैं, हमारा तो माशाल्लाह कोई वक्त नहीं है, जब भूख लगती है हम खा लेते हैं और नहीं भी लगती तो भी खा लेते हैं। लेकिन एक तो इससे ये पता चलता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उस वक्त अभी खाने का वक्त नहीं हुआ था, बीच में थोड़ा सा वक्त था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बिजी करने के लिए कि हाँ हाँ ज़रूर बात करेंगे, बस खाना खा लें फिर इसके बाद बात करते हैं। अब ये जो बीच का वक्त था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम यूज़ करना चाहते थे दावा के लिए, क्योंकि इस वक्त उनको पता था कि यूसुफ हमारी मजबूरी है तो वो यूसुफ की बात बड़े गौर से सुनेंगे, और साथ ही ये कह के कि भाई मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा, अब दिल में फख्र आ सकता था कि देखो जी मुझे इल्म मिला तुम्हें नहीं मिला, तो कहानी ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, कहने लगे कि ये उस इल्म में से जो मेरे रब ने मुझे दिया, हम्बल है, आजीज़ है, वेरी डाउन टू अर्थ है कि देखो मेरी कोई खूबी नहीं है, ये अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। और दूसरी इसे एक और चीज़ मिलती है और वो क्या है कि जब भी किसी को दीन की बात बताएं तो अल्लाह के सिखाए हुए इल्म की बात करें, इधर उधर की बातें ला के आप लोगों को कुरान पढ़ा देंगे ना तो वो दूर के तुक्के ही दिखाएंगे, कुरान के टेक्स्ट में रहे। इस वक्त आपको मैं ये एक एक आयत जो पढ़ रही ना इससे टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे तो इसमें अच्छा लगता है, सिर्फ मैं अपनी जुबान से बातें करूंगी ना तो आप पारों को एक साइड पर करके जरा मेरी बातें सुनने में खो जाएंगे, लेकिन असल तफसीर क्या है कुरान के साथ चलें। अल्लाह ताला कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ये बता दिया कि ये अल्लाह के सिखाए हुए इल्म से है, और अल्लाह ने इल्म कब दिया, इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। बड़ा खूबसूरत तफसीर का नुक्ता है कि ये उस इल्म में से जो मुझे रब ने सिखाया, कब, जब बेशक मैंने छोड़ दिया उस मिल्लत को, कौम को, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती और वो आखिरत के काफिर है। ये है असल नुक्ता। थॉट क्या दे रहे हैं कि मैं भी एक काफिर कौम में से था, जब मैं अपने खानदान बिरादरी के गलत कामों में शामिल रहता था उसके साथ तो मुझे अल्लाह ने इल्म नहीं दिया, मैं भी तुम जैसा ही था, जब मैंने उनके गलत तौर तरीकों को छोड़ा, उनके रस्म व रिवाज को छोड़ा, उसके बाद अल्लाह ने मुझे फरासत दे दी। आज ये बहुत सारे सवालों का जवाब है। मैंने देखा है कि करीब से हर बंदा खूबसूरत है, मैं तो अपने दिल से अब इस बात पे दिन ब दिन इतनी पक्की हो रही हूँ कि अंदर से कोई बंदा बुरा नहीं है, चाहे कोई चोर या डाकू आपके सामने आ जाए, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह का प्रोडक्ट बुरा नहीं हो सकता। जैसे आप देखें ना कि टोयोटा कंपनी है, उसका एक ब्रांड है ना, वो कभी गलत गाड़ी नहीं मार्केट में देगी। तो क्या अल्लाह ताला गलत किस्म का बंदा दे देगा? ये तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम करेंगे, नफ्से हमारा के जो खूबियां या उसके साथ जो इंसान के साथ खराबियां लगी हुई हैं। लेकिन असल ये कि हालात और माहौल उसको बुरा बना देते हैं। अगर आप और मैं चाहते हैं ना कि हमें वो सच्ची मोहब्बत मिले, जो इस वक्त भी हमारी तड़प होगी कि हाय दीन सीखने को बड़ा दिल चाहता है, हाय हमारा बहुत दिल चाहता है हम एक दफा डीपली कुरान पढ़ें। वजह क्या है? इन्नी तरक तो मिल्लत कौमिन वाली बात नहीं होती। हम जितना अपनी फैमिलीज के अंदर रहते हैं, खानदानों में रहते हैं, उतना अल्लाह से दूर होते हैं। ये मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ। हम लोग जब वेस्ट में होते हैं ना, मैं अपनी नहीं बीसियों के सैकड़ों सिस्टर्स का ये आपको बताती हूँ, वो कहती हैं कि हम अमेरिका में आए तो हमें दीन मिला, हमारे तो खानदानों में औरत की तालीम का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात है कि जब परदेश में होते हैं तो कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानियां नहीं होती। यहाँ माशाल्लाह जितने लंबे सिलसिले हैं, शायद इतने तो मलका लिस्बत के भी नहीं होंगे जितने हमारे एक कॉमन मैन के हैं। यकीन कीजिए इतने नौकर शायद ही उसके पास हों जितने हमारे घरों में, और इतने जोड़े मैं यकीन से कह सकती लेडी डायना के नहीं थे जितने हमारे पास हैं, और इतने कीमती नहीं होंगे वल्लाह आलम, अल्लाह जानता शायद इसमें भी कोई हिकमत होगी। तो बहरहाल जब हम अकेले होते हैं ना फैमिली से दूर, तो आप देखिए कि हम अल्लाह से करीब होते हैं। आप आजमाएं कभी आपके मियाँ आपके बच्चे हमेशा साथ ही रहे तो आप उन्हीं मुश्किलों में पड़े रहते हैं। अभी एक बच्चे को मना रहे हैं तो दूसरे को है। कुछ दिन के लिए सब कहीं चले जाएं, मियाँ चले जाएं, हज पे चले जाएं, कहीं बाहर जाएं, वो दिनों में आपको अल्लाह ज्यादा याद आता है? वो तन्हाई और वो उसमें नमाज में खुशू ज्यादा आता है ना, तो छोड़ना पड़ता है। यहाँ से अमल का नुकता नोट कर लीजिए, अगर चाहते हैं ना कि अल्लाह दिल खोल दे तो गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, रस्में, गलत तरीके। हम बाज़ दफ़ा फैमिली प्रेशर का नाम लेकर ही ये नहीं छोड़ पाते। तो फिर आप इसको इस तरह समझिए कि अगर आप लेडर पे चढ़ रहे हैं, आपको ऊपर के स्टेप पे जाना है तो नीचे का पाँव छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसे ही ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि नीचे वाले पाँव को ना उठाऊं और ऊपर चढ़ जाऊं। इसलिए कुछ ना कुछ ग्रिफ ढीली करने पड़ेगी। और शायद इस दौर में सबसे बड़ा बुत हमारे पास जो है वो खानदान का है, बिरादरी का है। उनको छोड़ा और वत्तबा तो मिल्लत आबा इब्राहिम व इसहाक व याकूब, और मैंने पैरवी की अपने बापों इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दीन की। माँ का नलना नुशरिका बिल्लाहि मिन शैइन, हम में से किसी को ये लायक नहीं था कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाए। और ये सब कैसे हुआ? ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये हम पर अल्लाह के फजल में से है। व अलन नासी वलाकिन अक्सरन नासी ला यशकुरून, और बहुत सारे लोगों पर अल्लाह का एहसान है लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैंने अपने बाप दादा के तरीकों पर चलते हुए अल्लाह के तरीके को अपनाया, और ये अल्लाह का फजल है कि किसी बंदे को शिर्क से बचाकर तौहीद पे वो ले जाए। क्या पता चल रहा है? अगर आज इस वक्त आप कुरान की महफिल में है ना, तो ये अल्लाह के फजल से है। मैं अक्सर अब कुछ सिस्टर्स को कहती हूँ कि अगर आप आज यहाँ ना आती तो कहाँ होती? इस वक्त मैं भी आपसे पूछती हूँ, आप अपने आप से पूछें, अगर बिलफर्ज आज हम इस क्लास में ना आते तो आज कहाँ होते? किसी का प्लान था बाजार का, दर्जी का, ज्वेलर का, अच्छे काम भी होते हैं, ये कोई बुरे नहीं है जो मैं बोलती हूँ, लेकिन सिर्फ ट्रेंड्स की बात है ना। और बहुत सारे तो अभी सो ही रहे होते हैं, कोई नौकरों के सर पे खपरे होते हैं कि ये काम नहीं ठीक करते और ये नहीं करते, कोई बच्चों के साथ होते, कुछ मियाँ से होते। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला हमें किसी चीज़ के अंदर अपने लिए चुन ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद किया कि मैं अल्लाह के दिए हुए माल को और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसको अल्लाह ही की तरफ मंसूब कर दूँ। अब यहाँ से अगर हम ये बात देख लें कि उनका माइंडसेट बनाया, मैंने बुतों को छोड़ा या मैंने कुफर की या इल्हाद की तरीकों को छोड़कर अच्छा तरीका अख्तियार किया, हम सब के एक सवाल का जवाब है। कभी अकेले में आप खुद से पूछें या किसी इंसान से जो बड़ा डिप्रेस है, बीसियों लोगों ने ये बात शेयर की है कि कमी है कुछ जिंदगी में, कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ह्यूस्टन की एक बात याद आ गई कि वहाँ हमारे एक सिस्टर थी, यानी आप कह सकते हैं कि ह्यूस्टन की सबसे फेमस सिस्टर थी वो। पार्लर्स भी थे उनके, बुटीक्स भी थे, और जो भी यानी मीडिया कवरेज भी थी उनकी, चेन फ्रेंचाइज हो गया बाद में उनका ये सब कुछ। अल्लाह ने किसी तरीके से उनको क्लासों में लाना शुरू किया। फिर जब वो आती थी ना तो फिर वो घंटों बैठती थी, कहती थी मुझे इतना अच्छा लगता है इधर आके, मेरा जाने को दिल नहीं करता, सब लोग मेरे पास आना चाहते हैं और मैं इधर आती हूँ। और फिर जब वो अपने दिल की बातें करती थी ना, कहती थी मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी, मैं लॉस थी, अब मुझे बहुत सुकून है। तो मैंने किस लिए कि आपको अल्लाह की किताब की जरूरत थी। देखिए बच्चा कितना ही रोए, 10 लोग भी उसको बहलाएंगे ना तो चैन नहीं आता। जो ही माँ पकड़ती है बच्चे को सुकून आता है। तो जैसे माँ की गोद में बच्चे को सुकून मिलता है ना, तो 70 माँ से ज्यादा प्यार करने वाली जात के कलाम को सुनकर, इससे जुड़कर हमें सुकून मिलता है। किसी दुख का शिकार है, मैं कहती हूँ इंसानों के तुतकारे में, माल के परेशान है आप, बीमारियों के रस्सी हैं, एक दफा अल्लाह का दामन पकड़ लीजिए, फकद इस्तम सकबिल वस्ता, फिर देखिए कि लनफिसा मलहा, आज हमारे सारे डिप्रेशन, सारी परेशानियों और मोस्टली बीमारियों की वजह यह है कि हमने अपनी रूह को अल्लाह के जिक्र से दूर किया हुआ है।